कल क्लास चल रहा था 23:10:90 का प्रातः क्लास, 9 नंबर के रजिस्टर में 95 पेज और उसमें मध्यांत का भाग चल रहा था। सूरज चांद की बात हो रही थी कि सूरज चांद को ग्रहण लगता है, ऐसे नहीं कि चंद्रमा सितारों को ग्रहण नहीं लगता है, सबको पूरा ग्रहण लगा हुआ है, A to Z, प्रजापिता से लेकर के और जो भी आत्माएं मनुष्यात्माएं हैं सबको ग्रहण लगता है, पूरा ग्रहण लगा हुआ है, ऐसे नहीं कि अधूरा ग्रहण लगा हुआ हो। अब बाप कहते हैं याद से ही ग्रहण उतरेगा, किसकी याद से? परमात्मा बाप की याद से ही ग्रहण उतरेगा। और याद का तरीका बता दिया कि वो निरा और सहज याद कैसे होगी जिससे ग्रहण उतरेगा। कोई भी पाप नहीं करो, पहला नंबर पाप है देह अभिमान में आना, ये कड़ा पाप है। बच्चों को इस एक जन्म के लिए ही शिक्षा मिलती है क्योंकि अभी दुनिया को चेंज होना है। इस बात में दुनिया को चेंज होना है। कौन सा कड़ा पाप बताया? देह अभिमान। तो देह अभिमान में चेंज होकर के क्या होगा? आत्मिक स्थिति की दुनिया बनेगी, नई दुनिया में जो भी आत्माएं होंगी वो सब अपने को आत्मा समझने वाली होंगी, देह भान में और फिर देह के संबंधियों की ओर बुद्धि भगाने वाली नहीं होंगी, क्योंकि जब देह भान होता है तो देह के संबंधियों की तरफ बुद्धि भागती है। मित्र संबंधी वो याद आते हैं, तो वहां वो याद नई दुनिया में नहीं आएंगे। याद कहाँ आते हैं? देह और देह के संबंधियों का भान कहाँ आता है? इस पुरानी दुनिया। अब इस पुरानी दुनिया को चेंज होना है, फिर ऐसी शिक्षा कभी नहीं मिलेगी। बैरिस्टी आदि की शिक्षा तो तुम जन्म जन्मांतर लेते आए हो, लेकिन ये शिक्षा आत्मा अभिमानी बनने की और देह अभिमान तोड़ने की शिक्षा और किसी जन्म में नहीं मिल सकती। ये सिर्फ इस जन्म में परमात्मा बाप सिखाने आए हुए हैं कि आत्मा अभिमानी कैसे बनना है। ज्ञान सागर बाप एक ही बार आते हैं, स्कूल आदि तो सदा है ही, यह ज्ञान एक बार मिला बस फिर नहीं मिलेगा। तो इंतजार कर रहे हो, ज्ञान सागर बाप एक ही बार आते हैं, तो बाप कितना सहज करके समझाते हैं। तुम आत्मा पाठधारी हो, आत्माएं अपने घर से आकर के यहाँ पार्ट बजाती है, उस घर को मुक्ति धाम कहा जाता है, स्वर्ग है जीवन मुक्त, यहाँ तो है जीवन बंध। जीवन में रहते हुए बंधन तो है ही है इस दुनिया में, क्योंकि देह धान है तो बंधन जरूर रहेंगे, और जहाँ बंधन है पराधीन सपने सुखनाए, बंधनों के जो अधीन है उसको स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता। तो बंधनों की दुनिया चाहे यहाँ हो चाहे वहां हो चाहे कहीं भी हो, बंधनों की दुनिया में दुख जरूर है, तो जरूर न यहाँ सुख भासेगा न वहां सुख भासेगा। अब यहाँ की बात ये निराली है कि यहाँ परमात्मा बाप बंधन में बांधने के लिए आया हुआ है। ये बंधन तो मीठा बंधन है, अनेक जन्मों के बंधनों से छुड़ाने वाला बंधन है, इसलिए मीठा है। ये बुद्धि से समझने की बात है, और वो देहधारियों के बंधन उनको मीठा बंधन नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो और ही फंसा पे चले गए। तो यहाँ है जीवन बंध, जीवन बंधा हुआ है। ये अक्षर भी यथार्थ रीति आदि करने हैं, जैसा इनका अर्थ है। क्या अर्थ है, यथार्थ क्या है, हैं? यथार्थ क्या है, हैं? जीवन बंध, जीवन में रहते हुए बंधन, भले संगम युग चल रहा है तो भी ब्राह्मणों के जीवन में बंधन है या नहीं है? बंधन तो है, लेकिन एक है ईश्वरीय बंधन और एक है आसुरी दुनिया का बंधन, तो अंतर जरूर होगा। ईश्वर बाप ये नहीं कहते हैं कि अभी राम राज्य है, तो कौन सा राज्य? रावण राज्य। ईश्वर भी कौन से राज्य में आते हैं? पराय देश में आते हैं, पराय राज्य में आते हैं, आकर के कहते हैं बच्चे मैं भी रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, मुझे इसे रावण राज्य में ही आना है। तो परमात्मा बाप भी जब इस जीवन बंध की दुनिया में आकर के बंध रहा है हम बच्चों के साथ, तो हमको कौन सी बड़ी भारी आपत्ति आ रही, हम क्यों उछल जाना चाहें? तो जीवन बंध का यथार्थ अर्थ याद करना है। मोक्ष कभी होता नहीं है। कोई कहे कि इस दुनिया से हम हमेशा के लिए मुक्त हो जाए, वो हमेशा के लिए तो कोई मुक्त हो ही नहीं सकता। मनुष्य कहते हैं मोक्ष मिल जाए, अर्थात आवागमन से निकल जाए। इस दुनिया में हम आए जाए ही क्यों, जो इतना हमको दुख सहन करना पड़े, जो हम सहन ही नहीं कर सकते। परंतु पार्ट से तो कोई निकल नहीं सकता। जितनी जिसको भोगना भोगनी है उसको भोगनी तो जरूर, क्योंकि अपने ही अकर्मों का हिसाब किताब होता है, वो तो जरूर भोगना पड़ेगा, निकल कोई नहीं सकता। यह अनादि बना बनाया खेल है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती है, जैसे कल्प के आदि में रिपीट हुई थी, पिछले कल्प में रिपीट हुई थी, वैसे अब फिर रिपीट हो रही है। सत्युग में वही देवी देवता आवेंगे, फिर पीछे इस्लामी बौद्ध आदि सब आवेंगे। जो 100% सत्ययुग होगा उसमें पहले कौन से धर्म के होंगे? पक्के आदि सनातनी देवी देवता धर्म के, जो कभी कन्वर्ट होने वाले नहीं। और बाद के जन्मों में दूसरे दूसरे धर्म वाले भी आवेंगे, तो ह्यूमन झाड़ ये बन जाएगा। इनका बीज ऊपर में है, दूसरा पेड़ बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। ये जो ह्यूमन झाड़ है इसका बीज ऊपर में है। ऊपर में है का मतलब कहीं ऊपर लटका हुआ है क्या? सृष्टि तो यहाँ है, और मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप ऊपर होगा क्या? जब मनुष्य सृष्टि यहाँ है, वो कोई परम धाम में नहीं होती। मनुष्यों की सृष्टि सूक्ष्म तल में नहीं होती, कहाँ होती है? यहाँ धरणी पर। तो मनुष्य सृष्टि का बीज भी कहाँ होगा? धरणी पर ही होगा, फिर ऊपर क्यों बता दिया? ऊंची स्टेज की बात है कि उस बीज की है ऊंची स्टेज, और धरणी की है नीची स्टेज। धरणी को माता कहा जाता है, क्योंकि धरणी मिट्टी की बनी हुई है, मिट्टी माना देह अभिमान। धरणी माता कहा जाता है, तो जरूर उस पृथ्वी की मानिंद कोई चैतन्य आत्मा भी है, जो सचयुग में धरणी बहुत सूक्ष्म होती है, थोड़ी भारत ही भारत, और कलयुग में आकर के वो बहुत विस्तार को पा जाती है। तो जो विस्तार को पाती है उसका नाम है पृथ्वी, प्रतुला आदि विस्तार को पाती जाती है उसका नाम पृथ्वी पड़ता है। तो पृथ्वी है नीचे और आकाश ऊंची स्टेज वाला है ऊपर, तो ये दो पार्ट हैं। जैसे कबीरदास ने क्या कह दिया, दो पाटन के बीच में साब तो बचैन को। ये ऐसा महावारी महावार से ग्रह युद्ध हो जाता है, इन दो पाटों के बीच में सारी दुनिया में से एक भी साबुत नहीं बचता, सब टूट जाते। एक भी दाना एक भी बीज ऐसा नहीं है जो साबुत बचे पूरा पूरा, सब टुकड़े टुकड़े हो जाते। ये क्या बात हुई? तो अब ऐसा ये महाभारी महाभारत युद्ध विनाश ज्वाला इस रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से प्रज्वलित तो होती है, जो सारी दुनिया को चपेट में लेकर बैठती है अपने प्रभाव में। तो बाप है मनुष्य शक्ति का बीज रूप जो ऊंची स्टेज में है। मनुष्य शक्ति तो है ही, परंतु सत्युग में बहुत छोटी होती है। सत्युग में ये धरणी और उस पर होने वाली शक्ति बहुत थोड़ी होती है, छोटी, फिर धीरे धीरे बहुत वृद्धि होती जाती है, इसका रूप बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे कोई माता होती है तो पहले तो कन्या ही होती है, छोटा रूप होता है, फिर जितने ज्यादा बच्चे पैदा करती जाती है उतने ही विस्तार को पाती जाती है। तो ये है धरणी और वो है आकाश, जावा पृथ्वी, इनका नाम शास्त्रों में दे दिया है, पृथ्वी माता और द्यावा, उन्होंने उसको ब्रह्मलोक भी कह दिया है, जुलोक। तो धीरे धीरे बहुत वृद्धि होती जाती है। अच्छा फिर छोटी कैसे होगी है? क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा है? जो इतनी चौड़ी चकड़ी धरणी हो गई, इतनी देहवान वाली माता हो गई, तो छोटी कैसे होगी है? कोई तो तरीका होगा कि वो छोटी हो जाए। कैसे होगी? बाप आकर के पतित से पावन बनाते हैं। क्या पतित देह अभिमानी वो क्या बनाते हैं? पावन बनाते हैं, तो छोटी हो जाती है। ये कारण बताया, जब पावन बनाते हैं तो धरणी छोटी हो जाती है, और जब रावण आकर के उसको धरणी को पतित बनाते हैं तो धरणी विस्तार को पा जाती है। कितने थोड़े पावन बनते हैं, इतनी बड़ी सृष्टि, इतने धर्म के लोग, और उनमें से बहुत थोड़े से पावन बनते हैं, बाकी तो इस सृष्टि पर पतित ही बन करके रहते। पावन बनते ही नहीं, बाप के आने के बावजूद भी बन सर्वशक्तिवान बाप आता, लेकिन सबको पावन ऊंची स्टेज का पावन नहीं बना सकता। कितने थोड़े पावन बनते हैं, कोटों में कोई निकलते हैं, कोटों करोड़ों पुरुषार्थ करने वालों में से कोई, और कोई में से भी कोई, फिर उनमें से भी कितनी होती है। कोटों में से निकले कोई बेसिक नॉलेज में, फिर उन बेसिक नॉलेज में से छटनी होती है, तो उन कोटों में से कोई निकलते हैं एडवांस नॉलेज में। आधा कल्प बहुत थोड़े होते हैं, आधा कल्प में कितनी वृद्धि होती है। तो सबसे जाति संप्रदाय देवताओं की होनी चाहिए, जो सबसे पुराने हैं, क्योंकि पहले पहले ये आते हैं, परंतु और धर्मों में चले जाते हैं। कौन? देवी देवता सनातन धर्म के ही लोग, जो कच्चे होते हैं देवता, वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए जनसंख्या उनकी कम हो जाती है। नहीं तो देवी देवता सनातन धर्म की जनसंख्या सबसे जास्ती होनी चाहिए, और धर्म में क्यों चले जाते हैं और औरों की धारणाओं को क्यों पकड़ लेते हैं? क्योंकि बाप को भूल गए, बाप को और बाप के धंधे को भूल गए, बाप की एक्टिविटी को भूल गए, इसलिए फिर दूसरे दूसरे धर्मों में चले जाते हैं। ये भूल गए हैं कि बाप ही पतितों को पावन बनाने वाला है। यह है एकज भूल का खेल, दूसरी कोई भूल नहीं है। एक ही भूल कौन सी है, हैं? बाप को भूल गए और कृष्ण को गीता का भगवान समझ लिया। अरे कृष्ण तो बच्चा, जो बच्चा बुद्धि कृष्ण है वो कैसे नई दुनिया बनाएगा, कैसे पतितों को पावन बनाएगा? ये कोई बच्चे का काम थोड़े ही है, ये तो बच्चा कोई पतित से पावन कैसे बनाएगा? तो एक जो भूल है, भूलने से कंगाल हो जाते हैं, भूलते भूलते एकदम भूल जाते हैं। भक्ति भी पहले एक की करते हैं, क्योंकि सर्व की सरगति करने वाला तो एक है, फिर दूसरे किसी की भक्ति क्यों करनी चाहिए, हैं? भक्ति किसकी करनी चाहिए, एक की करनी चाहिए कि अनेकों की? एक की करनी चाहिए भक्ति भी, यानी भावना, श्रद्धा, विश्वास, भावना एक के ऊपर बैठाना चाहिए या अनेकों के ऊपर? अनेकों के ऊपर बैठाएंगे तो द्विविचारी बन जाएंगे। अब द्विविचारी भक्त मुझे बहुत प्रिय है, अब द्विविचारी याद परमात्मा को बहुत प्रिय है। इन लक्ष्मी नारायण को भी बनाने वाला तो एक शिव है ना, कृष्ण बनाने वाला कैसे होगा? ये एक अजबूल है क्या? उन्होंने किसको समझ लिया कि नरसे नारायण बनाने वाला कौन है? उन्होंने समझा कृष्ण ने शिक्षा दी नर अर्जुन को तो नारायण बना, नारी द्रौपदी को शिक्षा दी गई भगवान की तो वो नारी क्या बन गई? नारायणी बन गई। लेकिन कृष्ण भगवान तो था ही नहीं, यानी जो बच्चा है इस सृष्टि का पहला पत्ता वो भगवान नहीं हो सकता। भगवान का पार्ट अदा करने वाली कौन सी आत्मा? जो इस सृष्टि रूपी मनुष्य सृष्टि रूपी बीज का, वो झाड़ का बीज है, वही भगवान का रूप धारण करता है। उसी में परमात्मा शिव पहले पहले प्रवेश करके आदि सो अंत का पार्ट बजाते हैं, मुकर्रर रथ का पार्ट बजाते हैं। तो कृष्ण बनाने वाला कैसे होगा? ये तो हो नहीं सकता। राजयोग सीखने वाला कृष्ण कैसे होगा, सिखाने वाला? इसमें गलत छपा हुआ, राजयोग सिखाने वाला कृष्ण कैसे होगा? वह तो है सतयुग का प्रिंस, तो कितनी भूल कर दी, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। बाबा इतना बुद्धि में बिठाते हैं कि कृष्ण की सोल कोई गीता का भगवान नहीं हो सकती, गीता माता का पति नहीं हो सकती। गीता माता का पति कौन है? परम पिता परमात्मा शिव। तो जो गीता माता का पति है उसको तो भुला ही दिया, और जो गीता माता का बच्चा है उसको उसका पति बना ही दिया। कितना जुलुम कर दिया, जबरदस्ती, महापाप। कितनी भूल कर दी, बुद्धि में नहीं बैठता। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। कोई भी प्रॉपर्टी का झगड़ा आदि है तो उनको खलास कर दो, मतलब है, क्योंकि कोई प्रॉपर्टी का जिंदगी में झगड़ा होगा तो क्या होगा? बुद्धि उस तरफ जाएगी और बाप की याद को हटा देगी। तो बाबा ने कहा कि अगर कोई प्रॉपर्टी आदि का झगड़ा है तो पहले उस झगड़े को क्या करो, निपटा लो, नहीं तो बुद्धि बार बार उधर भागेगी। बाकी कन्याओं के पास तो कोई प्रॉपर्टी होती नहीं, ना उनका कोई झगड़ा होता है, उनको तो किसी प्रकार का झगड़ा करने की भी दरकार है नहीं। हाँ, तो प्रॉपर्टी आदि का झगड़ा है तो उनको खलास कर दो, झगड़ा करते करते तो प्राण भी निकल जाएंगे, किस बात का झगड़ा। दुनिया में जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के लिए अगर झगड़ा ही करते रहेंगे तो क्या होगा, आजकल तो कोर्ट में भी फैसला जल्दी नहीं होता है, दीवानी के मुकदमे जिंदगी भर चलते रहते हैं, दीवाना बनाए देते हैं और फिर भी फैसला नहीं हो पाता। तो झगड़ा करते करते तो प्राण ही निकल जाएंगे। बाप समझाते हैं इसने छोड़ा तो कोई झगड़ा आदि थोड़े ही किया, किसने, ब्रह्मा ने। ब्रह्मा ने जब अपना हिसाब किताब किया दुकान में तो आधा साधा था, हिसाब किताब तो होना ही था, तो झगड़ा थोड़े ही किया, उनसे कहा कि तुम्हारा जो हिस्सा है तुम ले लो, हमारा जो हिस्सा है हमको दे दो, कम मिला तो जाने दो, थोड़ा कम ही सही, अरे हमको बाप मिला तो सब कुछ मिल गया, उसके बदले कितनी राजाई मिल गई, क्या थोड़ा कम मिला, सब्र कर लिया तो देखो कितनी राजाई मिल गई, तो जितना मिला उतना ही बहुत, क्या अगर कुछ थोड़ा ही मिलता है तो बहुत है, थोड़ा मिला थोड़ा ही सही, ना सारा सही, अरे कुछ दूसरों को ले लेने दो, कितनी बड़ी राजाई उसके बदले में मिल गई। बाबा बताते हैं मुझे साक्षात्कार हुआ विनाश और राजाई का, तो कितनी खुशी हुई कि ये दुनिया ही विनाश होने वाली है तो प्रॉपर्टी सब अपने आप विनाश हो जाएगी, क्योंकि झगड़े से जो मिली हुई प्रॉपर्टी होती है वो झगड़े में ही खलास हो जानी है। सहज मिले सो दूध सम, मांग लिया सो पानी, अब खींच लिया सो खून बराबर, तो सहज सहज जो मिल जाए वो ही अच्छा है। हमको विश्व की बादशाही मिलनी है तो ये सब क्या है, ऐसे थोड़े ही कोई भूख मर जाएंगे कि प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी तो ब्राह्मण भूख मरेंगे, नहीं भूख नहीं मर सकते, बिगर पैसे वाले भी पेट तो भरते हैं ना। मम्मा ने कुछ लाया क्या, मम्मा जब यज्ञ में आई तो वो कुछ लाई थी क्या, जब मम्मा ही कुछ नहीं लाई और देखो कितना ऊंच पद बन गया, स्वर्ग में जाकर के राधा बनेगी, कृष्ण की युगल बनेगी, कृष्ण की संगनी बन गई, तो मम्मा तो बाद में आई यज्ञ में, मम्मा बाद में आई और पहले कौन आया है, मम्मा तो बाद में आई ना, तो बाद में आने वाले तो फिर भी कम प्राप्त करेंगे और पहले आने वाले तो जास्ती प्राप्ति करने वाले हैं, तो मम्मा तो बाद में आई तो भी कुछ नहीं लाई थी तो भी देखो कितना भाग्य बन गया, क्योंकि यज्ञ की संभाल की, तो यज्ञ की जो संभाल की उस संभाल से यज्ञ का जो कम खर्च बालानसी हुआ वो उसको ही मिलेगा, कोई दूसरे को थोड़ा ही मिलेगा। तो तुम भी यज्ञ की संभाल करो, प्रॉपर्टी का चक्कर हाँ झगड़ा टंटा छोड़ दो। मम्मा ने कुछ लाया क्या,
कितना मम्मा को याद करते हैं। बाप कहते हैं याद करते हो ये तो ठीक है, परंतु अभी मम्मा के नाम रूप को याद नहीं करना है। क्या था है, मम्मा को कितना याद करते हैं, कौन याद करते हैं है? उस मम्मा को कौन याद करते हैं? यज्ञ वाले ब्रह्मा कुमार कुमारी। लेकिन बाबा ने डायरेक्शन क्या दिया कि उस मम्मा को याद नहीं करना है, अभी कोई और राज खुलना है। वो मम्मा और वो ब्रह्मा, उनको याद नहीं करना है। इन मम्मा बाबा की याद से कुछ मिलेगा नहीं, तो याद करते हैं ये तो ठीक है, परंतु अभी मम्मा के नाम रूप को याद नहीं करना है। अभी अभी मैंने कब, जब ये वाणी चली तब, अभी नहीं याद करना है। आगे चल करके मम्मा का नाम रूप जो असली है वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो जो असली रूप प्रत्यक्ष हो जाएगा, तुमेव माता च पिता तुमेव, तो याद करने से भी फायदा होगा। तो अभी इस अधूरे रूप को याद नहीं करना है, हमको भी उन जैसी धारणा करनी है। क्या करना है, जैसी मम्मा ने धारणा की वैसी हमको धारणा है, धारणा करनी है। क्या धारणा खास मम्मा ने की, मम्मा के जीवन की एक विशेषता बताओ जो सबसे बड़ी विशेषता थी। नहीं,
संस्कारों को,
हाँ क्या धारणा की,
जो बाप अभी अभी,
हाँ हमेशा बाप के संस्कारों के साथ, ब्रह्मा के संस्कारों के साथ संस्कार मिलाए। मम्मा ने कभी भी ब्रह्मा बाबा का किसी बात में, किसी कर्म में विरोध नहीं किया। बस आप बैठे रहो, आप सिर्फ आर्डर करो, सारा काम मैं करूंगी, सारा कंट्रोल मैं करूंगी, जैसे चलाओ, जहां चलाओ, जहां बिठाओ। तो ये सबसे बड़ी धारणा थी मम्मा की। तो मम्मा जैसी धारणा करनी है, हम भी मम्मा जैसे अच्छा बनकर के गद्दी के लायक बने। अंदर से क्या महत्वाकांक्षी रखनी है कि जैसे मम्मा ने जो धारणा की वही धारणा हम धारण करेंगे तो हम भी गद्दी के मालिक बनेंगे। तब तुम ये कृष्ण बनेगा, राधा बनेगी, तो तुम भी क्या बनोगे, राधा कृष्ण जैसे बन सकते हो। तो सिर्फ मम्मा की महिमा करने से थोड़ा ही हो जाएगा, लेकिन मम्मा जैसे गुण धारण करने पड़े। बाप तो कहते हैं माम एकम याद करो, क्या कहते हैं, मम्मा को भी याद न करो, बाबा को भी याद न करो, किसको याद करो, माम एकम, मुझे एक को याद करो। एकम का क्या मतलब है, एक बिंदु को। कैसे पता चलेगा कि एक बिंदु कौन सा है, बिंदु बिंदु तो ढेर है, सब आत्माएं बिंदु है, कीट पशु पक्षी पतंगे इनकी आत्माएं भी बिंदु है, तो पता कैसे चलेगा कौन सा माम एकम है, कौन से एक बिंदु। जरूर किसी साकार तनिक के द्वारा ही तो कहेगा माम एकम याद करो। याद की यात्रा में रहना है, मम्मा जैसा ज्ञान सुनाना है। मम्मा की महिमा का सबूत तब हो जब तुम भी ऐसे महिमा लायक बन करके दिखाओ, तब उस मम्मा का भी क्या होगा, मम्मा की महिमा का सबूत होगा। अगर तुम लायक नहीं बनाओ, बन करके दिखाओगे, तो मम्मा की महिमा का भी सबूत नहीं हो सकता। तो तुम्हारे ऊपर मदार है मम्मा की महिमा का सबूत तुमको देना है, लायक बन करके दिखाओ। सिर्फ मम्मा बाबा कहने से पेट नहीं भरेगा। अभी कृष्ण की बात कर रहे थे और अभी कहां पहुंच गए, मम्मा बाबा के ऊपर पहुंच गए। अभी कह रहे थे कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, मैं गीता का भगवान हूं, और अब कहाँ पहुंच गए? अब बाबा के ऊपर, ब्रह्मा बाबा के ऊपर पहुंच गए। ये कोई तुकतान है? है ये कोई कनेक्शन है? कोई लिंक है? अरे इस वाणी का कोई लिंक है? हाँ लिंक है, यही लिंक है कि बच्चे समझ बैठते हैं कि गीता का भगवान साकार रूप में प्रैक्टिकल रूप जो स्वर्ग को स्थापन करने वाला भगवान है वो कोई ब्रह्मा का व्यक्तित्व है, मम्मा बाबा कोई भगवान भगवती का व्यक्तित्व नहीं है, भगवान तो गीता का कोई और है जो अभी प्रत्यक्ष होने वाला है सारी दुनिया के बीच। तो सिर्फ मम्मा बाबा कहने से पेट नहीं भरेगा, मम्मा बाबा सिर्फ कहते रहेंगे तो और ही पीठ पीठ से पेट लग जाएगा। क्या होगा? जो मम्मा ही बाबा के पीछे लगे रहेंगे, महिमा उन्हीं की करते रहेंगे अंत तक, तो क्या होगा? उनका जो बुद्ध रूपी पेट थोड़ा बहुत रह गया है वो भी भर नहीं जाएगा, पेट पीठ से चिपक जाएगा। अभी तोंद निकली हुई है बाहर, फिर वो अंदर चला जाएगा, यानी बुद्धि बिल्कुल ही खलास हो जाएगी। जैसे उनका हार्ट फेल हो गया तो तुम्हारा भी अंजाम क्या होगा? हार्ट फेल, बुद्धि काम ही नहीं करेगी। कोई आदमी की जब बुद्धि काम नहीं करती है तभी उसका हार्ट फेल होता है, जिसकी बुद्धि काम करने वाली होती है उसका हार्ट फेल हो ही नहीं सकता। तो पेट पीठ से लग जाएगा, शिव बाबा को याद करने से पेट भरेगा। क्यों? क्योंकि वो है बुद्धिमानों की बुद्धि, उसकी बुद्धि की कमाल देख करके सारी दुनिया चक्रित हो जानी है। तो उसी को याद करो क्योंकि बुद्धि की कमाल है। इस दुनिया में मनुष्य आत्माओं को सबसे बड़ी नियामत, हजार नियामत कौन सी मिलती है? बुद्धि। ऐसे तो धन भी मिलता है, संबंध भी मिलते हैं, लेकिन धन और संबंध ही बड़ी नियामत नहीं है। क्या बड़ी नियामत है? जो जन्म से हमको बुद्धि मिली इस जन्म में, वो ही बड़ी नियामत। तो ये श्रेष्ठ बुद्धि का वरदान, ये बुद्धिमानों की बुद्धि बाप आकर के देता है, नॉलेज देकर के हमारी बुद्धि को खोलता है। तो बहुत अच्छे गुण धारण करने हैं। तो बलिहारी एक बाप की है, इस दादा को याद करने से भी पेट नहीं भरेगा। क्या? ना मम्मा को याद करने से पेट भरेगा, ना दादा को याद करने से बुद्ध रूपी पेट भरेगा, और ही खाली होता जाएगा। याद करना है एक को, बलिहारी उस एक की है। युक्तियां रचनी चाहिए सर्विस की, सदैव मुख से फूल निकले। अगर कांटे पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ही बुद्धि ठहरे। क्या? जिस एक की बलिहारी है उसकी तो कई की ग्लानी पत्थर निकाल दिए। एकदम हप कर गई। किनको हप कर गई? अरे ज्ञान देने वाला ज्ञान सूर्य आया हुआ है, तो ज्ञान सूर्य के ऊपर श्रद्धा बैठानी है, भावना बैठानी है, निश्चय बैठाना है, या देहधारियों के ऊपर निश्चय बैठाना है? देहधारियों के ऊपर निश्चय बैठाने की बात नहीं है। तो बाबा मुरली में कंप्लेंट करते हैं, कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद, शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। एक मुरली में बोला, तो ज्ञान में चलने वाली कुछ ऐसी भी आत्माएं थी जो मम्मा के आधार पर ज्ञान में चल रही थी, तो जब मम्मा ने शरीर छोड़ा 65 में, तो मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद उनका निश्चय उखड़ गया, क्योंकि बाबा ने बाबा भले चले जावे लेकिन मम्मा यज्ञ के अंत तक कार्य करती रहेगी, लेकिन मम्मा ने पहले ही शरीर छोड़ दिया। लेकिन बच्चे नहीं इस भाव को समझ सके, और जो समझाने वाले निमित्त गुरु थे उनकी बुद्धि में भी ये रहस्य नहीं आया, आना ही नहीं था, क्योंकि वो तो और ही अंधेरा करने वाले हैं। तो मम्मा ने शरीर छोड़ दिया, पार्थिव शरीर, अब ये पता नहीं कि बाबा तो बहुत रमतु रमजबाज है, एक को निमित्त नहीं बनाएगा, तो शक्तियां तो अनेक है ना, दूसरी शक्ति को निमित्त बना देता है, तो इस राज्य को कोई नहीं समझ सका। जंगल जो है वो कभी राजा के बगैर नहीं होता। क्या जंगल का राजा कौन? शेर शेरनी। तो एक शेर शेरनी जाती है तो दूसरी, दूसरे शेर शेरनी तैयार हो जाते हैं। तो मम्मा ने शरीर छोड़ा तो यज्ञ वत्स नहीं समझ सके कि मम्मा का पार्ट कहाँ चल रहा है। सिर्फ साक्षात्कार किया बंदा होगा कि नेपाल में कहीं मम्मा ने जन्म लिया है, उन्होंने समझा स्कूल नेपाल। अब बेहदर का बात तो बेहदर के बच्चों से बेहदर की बातें करते हैं, हद की बुद्धि, विकारों की दुनिया में लगी हुई बुद्धि उन्हें बेहद की बातों को नहीं समझ सकती। तो देहधारी धर्म गुरुओं ने तत्कालीन ये बात नहीं समझी कि मम्मा कहीं गई नहीं है, मम्मा इसी सच्ची रूपी रंगमंच पर अंत तक बाबा के साथ सहयोगी बनकर के कार्य करेगी। तो बाबा ने बोला था मम्मा भल, वो बाबा भले चला जावे, गुप्त हो जावे, लेकिन मम्मा अंत तक यज्ञ की पालना करेगी। तो बच्चों को प्रूफ नहीं मिल पाया, क्योंकि स्थूल आंखों से इस बात को देखा, लहजा उन्होंने समझ लिया मम्मा ने शरीर छोड़ दिया, बाबा की वाणी झूठी हो गई। और मम्मा का प्यार जो मिलता था जिन बच्चों को, क्योंकि मम्मा के प्यार से उठे थे, अन्य देहधारियों के प्यार से तो उठे नहीं थे, तो उनको ये भी निश्चय जाता रहा कि मम्मा से जितना प्यार हमको मिल सकता है उतना प्यार अब कोई दूसरी आत्मा से नहीं मिलेगा, तो वो टूट पड़े। इसी तरह 2-3 वर्ष के बाद बाबा ने शरीर छोड़ दिया, तो बाबा के प्यार में जो चलने वाली आत्माएं थी, बाबा भी तो देहधारी कि निराकारी स्टेज बन गई। जितने भी धर्म पिताएं होते हैं जब आदमी आते हैं शुरू शुरू में, तो उनकी निराकारी स्टेज होती है। जैसे महात्मा बुद्ध है, क्राइस्ट है, गुरु नानक के चेहरे को देखिए, चेहरे को देखने से ही उन धर्म पिताओं के पता लग जाता है कि जैसे उनकी आत्मा इस दुनिया में नहीं है, एकदम निराकारी स्टेज, आत्मा जैसे परमधाम में लटकी हुई है, तत्व प्रधान स्टेज।
तो ब्रह्मा बाबा का एक भी ऐसा फोटो नहीं होगा जिसमें उनकी चेहरे की निराकारी स्केच दिखाई गई हो, इसलिए उसका नाम ही रखा गया साकार पार्ट, निराकार पार्ट नहीं। इस देह के अंदर रहते हुए भी निराकारी स्टेज से पार्ट बजाया जा सकता है। अगर वो निराकारी स्टेज का पार्ट नहीं बजाया जा सकता है तो निराकारी स्टेज दिखाई कैसे जाएगी चित्रों में? देखो शंकर के चित्र को देखो, जो भी पुराने चित्र हैं, उनमें शंकर की और धर्म पिताओं, जो दुनिया में दूसरे धर्म पिता हैं, उनके मुकाबले और ही ज्यादा ऊंची निराकारी स्टेज दिखाई गई। तो ब्रह्मा का एक भी फोटो ऐसा नहीं जिसमें वो निराकारी स्टेज निसंकल्पी स्टेज दिखाई गई। और बाबा तो सच्चे साफ दिल थे, बाबा तो इंटरफियर करके बोलते भी थे ना, ब्रह्मा की सोल भी बीच में इंटरफियर करके बोल सकती है, तो बाबा मुरली में बोलते थे तुम बच्चे मेरे से भी पीछे जा सकते हो काय में योग में, तो क्या बाबा ये मक्खनबाजी करते थे है? ब्रह्मा की सोल भी मक्खनबाजी करना जानती थी क्या है? वो तो सीधी सच्ची साफ दिल आत्मा थी, वो जैसा अनुभव करती थी वैसा ही बोलती थी। उन्होंने कहा बच्चे मेरे को तो बहुत लफड़े लगे हुए, इतने बच्चों का 300-400 का बरात को रोज सौ वर्षों से मेरे को पालना करनी पड़ रही, तुमको तो ऐसी कोई पालना करने की जिम्मेदारी नहीं होगी, तुम तो हो मस्त कलम की दर्शकी, तो तुम मेरे से भी योग में पीछे जा सकते हो। तो जो भगत बच्चे होते हैं उनको इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि बाबा से कोई बच्चे पीछे कैसे जा सकते हैं। ब्रह्मा बाबा तो ब्रह्मा तो हो गया नेक्स्ट टू गॉड, यानी शिव ज्योति बिंदु के बाद दूसरा नंबर किसका? ब्रह्मा का नंबर समझ लिया, तो वो तो देहधारियों के भगत हो गए। जैसे और धर्म पिताएं हैं वो धर्म गुरु हैं देहधारी, वैसे ब्रह्मा भी देहधारी धर्म गुरु है, पहले नंबर का धर्म गुरु। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा भी ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई लेकिन देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना नहीं हुई। कोई कह सकता है तो कोई देवी देवता का सैंपल पहला युगल तैयार हो गया है? लबारी देने के लिए भले समझाए दिया जाए, जैसे समझाते रहे सुनने में आया कि कुमार का दादी और मनमोहिनी दीदी की प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति मार्ग का स्थापना हो चुकी है, बाबा ने स्थापन कर दी। एक में पुरुष के संस्कार है कंट्रोलर के, एक में कंट्रोल होने के संस्कार है, एक है प्रधान मुख्य प्रशासिका और एक है सहयोगिनी। जैसे स्त्री सहयोगिनी होती है ना, अरे आप ब्राह्मणों की दुनिया में प्रशासक और प्रशासिका कहां से आ गए? क्या सतयुग शुरू हो गया? राजा शुरू हो गई क्या? अरे बाबा ने तो ब्राह्मणों को बताया तुमको सेवाधारी बनकर के रहना है, तुम बच्चों को यहाँ राजाई पे नहीं बैठना है, यहाँ ही अगर राजाई भोग लेंगे तो वहां राजाई तुम्हारी कम हो जाएगी, कट हो जाएगी। तो भक्त लोगों ने ब्रह्मा को ही नेक्स्ट टू गॉड समझ लिया, लेकिन बाबा ने तो मुरली में सब कुछ बोला हुआ है, बाबा ने मुरली में बोला हुआ है नेक्स्ट टू गॉड इज ना, नेक्स्ट टू गॉड इज ब्रह्मा, यानी गॉड माने शिव और शिव के बाद दूसरा नंबर ब्रह्मा का है, ऐसा तो किसी मुरली में नहीं बोला। बाबा ने बोला नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, दूसरी मुरली में बोला नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, सत्यु का कृष्ण नहीं संगम युग का कृष्ण, जिसका शास्त्रों में गायन है, सत्यु के कृष्ण का शास्त्रों में कोई गायन नहीं है। तो ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया,
और जो ब्रह्मा के भक्त थे पक्के, किसी और को मानने वाले नहीं थे, उनको बुद्धि में ये पक्का बैठ गया कि अब हमको ब्रह्मा जैसी पालना किसी से मिल नहीं सकती। और ये बात सत्य भी थी, ब्रह्मा जैसा प्यार मृदुल आत्मा कोई संसार में है ही नहीं, इतना प्यार देने वाली आत्मा कोई हो ही नहीं सकती। दिन भर तुमने ब्रह्मा का प्यार लिया और उसको प्यार का अधूरा नहीं दिया, वो आगे आने वाले समय में पश्चाताप करेंगे कि हमने उस प्यार को सही रूप में पहचाना नहीं। वो प्यार अब उनको संसार में कहीं भी मिल नहीं, गॉड फादर से भी नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि जिस समय पर जिस चीज की जो वैल्यू देनी चाहिए वो वैल्यू नहीं दी तो जैसे चूक गए। तो बचपन ही होता है माँ का प्यार लेने का, और कोई बच्चा को पता हो माँ का प्यार का उल्टा एडवांटेज उठाए और माँ का ही हार्ट फेल कर दे या हार्ट फेल करने का निमित्त बन जाए तो ऐसे बच्चों को क्या कहा जाएगा। तो 65 से लेकर के 68 तक दोनों ही महान आत्माएं जो ब्राह्मणों की संगत हुई दुनिया में थी, प्रैक्टिकल जीवन में उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो उनके आधार पर चलने वाले जो ब्राह्मण वत्स यज्ञ में थे वो सब ज्ञान से टूट पड़े। ये तो हुए देहधारियों के आधार पर चलने वाली विशेष आत्माएं, लेकिन कुछ ऐसी भी आत्माएं थी जो ज्ञान के आधार पर चल रही थी। तो उन्होंने बाबा की मुरली का महावाक्य सुन रखे थे, जैसे अभी बताया कि मम्मा यज्ञ के अंत तक पालना करती रहेगी और वो ज्ञान का पॉइंट उनका हल करने वाला कोई नहीं रहा। मम्मा में बुद्धि थी क्योंकि वो तो है ही बुद्धि की देवी, सरस्वती बुद्धि विद्या की देवी है। बाबा किसी पॉइंट को लेकर के इतनी गहराई में नहीं जा सकते थे क्योंकि बाबा के थ्रू तो शिव बाबा वाणी चलाने वाला था, ज्ञान की वाणी कौन चलाता था? शिव बाबा, न कि ब्रह्मा। ब्रह्मा नहीं चलाते थे, वो तो कोरा कागज जैसे आत्मा बच्चा बुद्धि। मुरली ने बोला ये ब्रह्मा तो जैसे देवी बन गए, इन्हें ब्रह्मा का नाम मैंने रखा है देवी। मुरली ने बोला देवी क्यों? क्योंकि बच्चा बुद्धि आत्मा है, किसी बात की ज्यादा गहराई नोक झोंक में जाने वाली आत्मा नहीं थी। तो ब्रह्मा जैसी श्रेष्ठ आत्मा उसने भी शरीर छोड़ा, तो जो ज्ञानी आत्माएं थी उनकी बुद्धि में ये बात आ गई कि बाबा ने तो वाणी में बोला था कि ब्रह्मा की आयु 100 साल और ब्रह्मा तो 100 साल के तो हुए नहीं, ये तो पहले ही शरीर छोड़ गए। तो ज्ञानी आत्माओं को ये संशय आ गया कि बाबा की वाणी कैसे झूठी हो गई, और उसका समाधान देने वाला कोई भी गद्दी नसीन देहधारी धर्म गुरु था ही नहीं। तो जब उनको समाधान नहीं मिला ज्ञानी आत्माओं को, ज्ञानी आत्माओं का भोजन क्या होता है? बुद्ध रूपी पेट का भोजन ज्ञान। तो ज्ञान जब उनको नहीं मिलता है तो वो हताश हो जाती है, टूट जाती है। तो कुछ तो ज्ञानी आत्माएं ऐसे टूट गई और कुछ मम्मा बाबा के जो भक्त के रूप में चल रही थी, आधार लेकर के चल रही थी, वो टूट गई। तो आधा विनाश त्रेता की शूटिंग के बाद, यानी ब्रह्मा की जब रात्रि शुरू होती है और दिन का अंत होता है, सत्युग त्रेता ब्रह्मा का दिन की शूटिंग, तो वो समाप्त हुई और आधा परिवार ब्राह्मणों का माया हप कर दी। तो बाबा ने बोला है आधों को तो माया एकदम हप कर जाती, क्या टाइम ही नहीं लगता, बाकी बचे आधे, क्या आधे बच गए, तो आधों को फिर धीरे धीरे द्वापर युग और कलयुग की शूटिंग में धीरे धीरे हप कर दी है। तो एकदम हप कर जाती खा जाती। तुम भी समझते हो जो नहीं आते हैं वह तो माया के बस हो गए ना, कहाँ नहीं आते हैं है? यहाँ नहीं आते हैं। ये वाणी कहाँ चल रही थी? तो माउंट आबू में चल रही थी। लेकिन माउंट आबू में चल तो रही थी, लेकिन यहाँ से मतलब बाबा का कहाँ का है? मधुबन। मधुबन किसे कहा जाता है? जहाँ मधुसूदन हो, जहाँ कृष्ण की सोल सारी कर रही हो, प्रैक्टिकल में साकार स्वरूप से। तो ब्रह्मा की सोल अब साकार स्वरूप से कहाँ कार्य कर रही है? वहाँ तो अव्यक्त ब्रह्मा की सोल आती है, वो तो सूक्ष्म शरीरधारी हो गया। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन देवताओं को तो सूक्ष्म शरीरधारी कहा जाता है, लेकिन कभी सुना कि कृष्ण सूक्ष्म वतनवासी होता है? कृष्ण के लिए कोई नहीं कहता कि कृष्ण सूक्ष्म वतनवासी होता है। कृष्ण का गायन कहाँ का है? इसी सृष्टि का। तो इसी सृष्टि पर कोई कृष्ण का नाम रूप धारण करने वाली आत्मा प्रैक्टिकल साकार शरीर के पार्ट बहराने वाली हुई है, यानी वही ब्रह्मा की सोल जब 100 वर्ष ब्रह्मा की एज पूरी कर लेती है, तो ब्रह्मा की आयु वृत्त लोक में समाप्त हो जाती। वो ब्रह्मा सो कृष्ण प्रिंस बन जाता है अमर लोक में, वैकुंठ में। यह है सारी बुद्धि की बात। क्या स्थूल बात कोई नहीं है, बुद्धि से समझने की बात है कि वो कृष्ण की सोल ब्राह्मणों की दुनिया में कहां और किस संगठन में किस ग्रुप में कार्य कर रही है। तो बाबा ने तो बोल दिया कृष्ण किस कुल में जन्म लेता है। कृष्ण का जन्म सूर्य वंश में और राधा का जन्म चंद्रवंश। तो चंद्रवंश तो त्रेता युग में होगा, यहाँ कहाँ से आ गया? लेकिन बाबा कहते हैं मैं तीन धर्मों की स्थापना करके जाता हूँ। कौन कौन से तीन धर्म? ब्राह्मण धर्म, वो तो ब्रह्मा द्वारा हुआ। फिर सूर्यवंश देवता धर्म और चंद्रवंश शक्ति धर्म। तीन धर्मों की स्थापना यही होती है। तो राधा को किस वंश का बताया? चंद्रवंश का। चंद्रवंश का मतलब चंद्रमा कौन? ब्रह्मा। तो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की जो साकार ब्रह्मा था उनकी चलाई हुई कुल परंपरा के आधार पर जो चलने वाले ब्राह्मण परिवार हैं वो हो गए चंद्रवंशी। वो सिर्फ ब्रह्मा के आधार पर चलने वाले हैं, ज्ञान सूर्य के आधार पर चलने वाले, ज्ञान सूर्य की वाणी के आधार पर चलने वाले नहीं। तो वो हो गए चंद्रवंशी। उनमें पलने वाली है राधा। राधा माना ब्रह्मा की सोल। ब्रह्मा ने उन चंद्रवंशियों के बीच में जन्म लिया और ब्रह्मा की सोल माना कृष्ण की सोल दिव्य जन्म कहाँ लेती है? सूर्य वंश में। सूर्य वंशी माना जो ज्ञान सूर्य के अलावा और किसी को मानने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। कोई भी देहधारी धर्म गुरु आ जाए दुनिया का, वो सिवाय ज्ञान सूर्य बाप के और किसी को मानने वाले नहीं। तो ज्ञान सूर्य का पार्ट वो 69 से गुलजार के तन में थोड़ा ही कहा जाएगा है? गुलजार में तो ज्ञान सूर्य बाप प्रत्यक्ष नहीं होगा, क्योंकि बाप तो आते ही हैं साकार रथ में, आकारी रथ में नहीं आते, अव्यक्त में नहीं आते, व्यक्त में आते हैं। व्यक्त ब्रह्मा में आते हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में मुरली में बोला है कि मैं नहीं आता हूँ, तो जरूर कहीं कोई ब्राह्मण बच्चा है जिसमें ज्ञान सूर्य शिव की सोलभी प्रवेश करके कार्य करती रहती है, वापस कोई परमधाम नहीं चली जाती, लेकिन प्रत्यक्ष होने का उसका टाइम है। उस समय बाबा ने बोला कि बाप वानप्रस्थी हो गया, माने वाणी से परे हो गया, तो जरूर कुछ टाइम के लिए बच्चों की स्थिति को देखने के लिए, बच्चों को अपनी स्थिति का साक्षात्कार कराने के लिए वाणी से परे हो गए, परमधाम तो जाने की बात ही नहीं, बाबा ने तो अंजाम किया हुआ है। बच्चे मैं तुम बच्चों को साथ लेकर के जाऊंगा, नैनों पर बिठा करके ले जाऊंगा। तो क्या नैनों के ऊपर है इसमें, तू नैनों के ऊपर बिठा के ले जाएगा, इनमें कैसे बिठा के ले जाएगा? नैनों पर बिठा के ले जाने का मतलब क्या हुआ? दृष्टि की पावर से बच्चों को खींच करके परमधाम ले जाएगा। इसलिए मुरली में बोला अंत में बाबा इतनी तीखी दृष्टि देंगे तुम बच्चों को कि तुम बच्चे अपने देह का भान भूल जावे। तो ये हुआ नैनों पर बिठा करके ले जाना। तो जरूर वो ज्ञान सूर्य बाप उन्हीं सूर्यवंशी बच्चों के संगठन के बीच में कार्य करता है, जिन सूर्यवंशी बच्चों ने एक सूर्य ज्ञान सूर्य बाप को मानने के अलावा और किसी को मानने का मादा है ही नहीं, उनके अनेक जन्मों के संस्कार हैं कि वो और किसी के सामने झुकते ही तो वो सूर्यवंशी जो आत्माएं हैं उनमें बाप ज्ञान सूर्य शिव और नेक्स्ट टू शिव कौन, शंकर कहो या कृष्ण कहो या प्रजापिता कहो, लेकिन शरीर तो एक ही है, व्यक्तित्व तो पर्सनालिटी तो एक ही है। तो एक ही पर्सनालिटी में वो तीनों मूर्ति जिसको कहते हैं त्रिमूर्ति शिव वो प्रवेश करके पार्ट बजाती, तो वो कृष्ण भी कहा जाता है, कृष्ण माना क्योंकि ब्रह्मा की सोल भी उसमें प्रवेश करके कार्य करती, और प्रवेश करके कार्य ही नहीं करती बल्कि उसकी प्रत्यक्षता भी होती है ब्राह्मणों की दुनिया में। जो बोला है मुरलियों में कृष्ण जब जन्म लेता है तो जैसे बिजली सी कौंध जाती, तो बिजली जब कौंधती है तो चारों ओर क्या हो जाता है, रोशनी ही रोशनी ज्ञान की हो जाती एक सेकंड के लिए, और फिर क्या हो जाता, बेरा बेरा। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई ऐसा टाइम आता है ब्रह्मा की 100 वर्ष एज पूरी होने के बाद 88-89 में कि जो ब्राह्मण हैं उनके अंदर बिजली की कौन जाती है, अंधेरे में तो जबान दे और अंधेरे में बिजली कौन जाए, तो अंधे जो अंदर प्रदेश के हैं उनको तो जरूर दिखाई पड़ जाएगा कि हाँ इधर है कृष्ण कन्हैया, और कृष्ण कन्हैया तो बिना गोपियों के होता ही नहीं, वो तो प्रत्यक्ष ही होता है भागवत के द्वारा, गीता ज्ञान उतना प्यार से नहीं सुनेंगे क्या, लेकिन भागवत जहाँ कथा होगी तो बड़े प्यार से सुनेंगे। गीता ज्ञान में सब रस नहीं लेते लेकिन भागवत की बातों में सब बड़ा रस ले लेंगे। हाँ कृष्ण ने गोपियों को भगाया तो उसकी एक पूरा ग्रंथ ही बनाई दिया, कौन सा भागवत। तो दुनिया वाले समझते उन्होंने कोई देहाभिमानियों की तरह बाह पकड़ पकड़ के भगाया होगा है, अरे ये तो योगियों का काम थोड़े ही है, किसी को बाह पकड़ पकड़ के भगाए कैसे भगाएगा, वो तो योगी राज कृष्ण कहा जाता है, योगी कृष्ण कहा जाता है। तो वो योग बुद्धियोग के द्वारा आत्माओं को खींचेगा या कोई बाह पकड़ के भगाएगा? जो आदि में हुआ तो अंत में भी होना है। आदि में क्या बाह पकड़ पकड़ के कराची में भगाया था फिर हैदराबाद से? नहीं, करते ही आत्माएं गई थी खींच करके। तो ये बुद्धियोग की खींचे। ऐसे ही अंत में आदि में तो हुआ था छोटा रूप, कितने का 300-400 भागी थी, और अंत में होना है संपन्न रूप, संपूर्ण रूप, जिसका गायन शास्त्रों में होता है। शास्त्रों में अधूरेपन का गायन नहीं है, 300-400 का गायन नहीं है। कब का गायन है? जब पूरी 16,000 का जो संगठन है, पूरी माला है, वो आत्माओं की परमात्मा बाप के प्रति आकर्षित होकर के भागती है, तो उसका गायन भागवत में पड़ गया और पूरी भागवत उस भागने की कहानी को लेकर बनाई दी गई। तो ऐसे बहुत हैं जिनको माया हप कर लेती है, और जब माया हप कर लेती है तो ब्रह्मा बाप को भी भूल जाते और शिव बाप को भी भूल जाते। जो ब्रह्मा कुमार अपने को कहते हैं वो अपनी अम्मा को भी भूल जाते हैं, अम्मा कहाँ काम कर रही है, उन्हें पता ही नहीं रहता है कि अम्मा और बाप का कंबाइंड रूप है, उनको कोई जुदा कर नहीं सकता। वो अम्मा बाप कौन? सृष्टि रूपी रंगमंच के माता पिता कौन है? प्रजापिता और ब्रह्मा, आदम और ईव, ये हैं सृष्टि रूपी रंगमंच के माता पिता। लेकिन उनके दो रूप हैं, एक तो है बाप दादा कंबाइंड रूप। क्या? बाप दादा कंबाइंड रूप, रोज मुरलियों में आता है, याद प्यार में क्या कहते हैं, मात पिता अलग बोलेंगे और बाप दादा अलग बोलेंगे, तो जरूर कोई अंतर की बात है। मात पिता कौन हुए? मात पिता भी स्त्री पुरुष होते हैं, और बाप दादा उनको तो स्त्री पुरुष का चोले की बात नहीं है, वो तो दोनों ही पुरुष है। तो मात पिता तो अलग अलग होने चाहिए और बाप दादा ये कंबाइंड एक ही शरीर में दोनों आत्माएं, क्योंकि ज्ञान सूर्य ज्योतिबिंदु शिव बाप बाप के रूप में जब प्रत्यक्ष होता है तो प्रजापिता के थ्रू ही कार्य करता है। क्या? चाहे वो बीजारोपण करने के लिए आदि में कार्य करे और चाहे वो बच्चों को वर्षा देने के लिए अंत में कार्य करे, लेकिन वो ये दोनों कार्य बाप का प्रजापिता के थ्रू ही करता है, दादा के थ्रू नहीं करता। दादा मन बड़ा भाई, बड़े भाई से वर्षा नहीं मिलता, वर्षा किससे मिलता है? बाप से। लेकिन बाप और दादा ये हैं दोनों कंबाइंड रूप, इनको कोई बच्चे अलग नहीं कर सकते। इसलिए अद्वैत वाणी में बोला, तुम बाप दादा को अलग अलग करेंगे वो फिर एक हो जाएंगे। तो यज्ञ के आदि में कुछ ऐसे आसुरी बच्चे थे जिन्होंने रामकृष्ण की आत्माओं को अलग अलग करने का उपक्रम किया, लेकिन वो फिर एक हो जाते। तो ये तो जन्म जन्म की साथी आत्माएं, उनको कोई जुदा कर नहीं सकता। जैसे गाड़ी के दो पहिए होते, अगर एक पहिया जाम हो जाए तो गाड़ी चलेगी नहीं। तो ये सृष्टि रूपी गाड़ी है, ये सृष्टि रूपी गाड़ी को तो चलना ही है कि रुक जाना है? वो तो चलना ही चलना है। अगर कोई उसका एक पहिया जाम करना चाहे, निकाल देना चाहे, तो जैसे सृष्टि ही खलास हो जाएगी, वो चाहते हैं कि शक्ति ही न हो, हम तो मुक्ति धाम में ही पड़े रहे। तो ऐसा कौन चाहते हैं? सन्यासी लोग। सन्यासी लोगों की एक प्रवृत्ति है कि हम तो निवृत्ति चाहते हैं, बस आत्मा ही आत्मा शरीर न रहे। लेकिन नहीं, जैसे शरीर और आत्मा की प्रवृत्ति है, वैसे संगमयुग में बाप दादा की भी कंबाइंड प्रवृत्ति है। उन बाप दादा यानी रामकृष्ण की आत्माओं को कोई जुदा जुदा नहीं कर सकता। तो बाप दादा पिए हो गए और माता पिता कौन हुए? माता तो फिर साकार होनी चाहिए ना, बाप दादा तो अव्यक्त स्टेज में है। कभी नहीं कहा 69 के बाद कि बाप दादा साकार में कार्य कर रहे हैं। कैसी स्टेज में है? अव्यक्त स्टेज में है। अव्यक्त स्टेज माना मनन चिंतन मंथन की स्टेज में है या निसंकल्पी बीज रूप स्टेज में? दोनों ही रूप में है। यानी अव्यक्त स्टेज में इन आँखों से नहीं दिखाई पड़ेंगे। व्यक्त मन जो आँखों से दिखाई पड़े और अव्यक्त मन जो आँखों से, इन आँखों से दिखाई ना पड़े, बुद्धि की आँख से उनको देखा जा सकता है, उनको पहचाना जा सकता है कि वो कहाँ कार्य कर रहे। तो बाप दादा तो ये हुए और माता पिता, माता तो जरूर साकार चाहिए। बाप निराकार होता है, माता साकार होती। दादा भी यानी बड़ा भाई भी बाप समान कहा जाता है। तो बाप समान तो दादा तभी होगा।
आज नहीं, स्थापना कराता हूँ, कराता हूँ ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराता हूँ और शंकर द्वारा विनाश कराता हूँ पुरानी दुनिया का। फिर करता क्या हूँ? करणहार क्यों कहा गया? ब्रह्मा द्वारा जो कर्म करते हैं वो कर्म मैं करता हूँ। शंकर द्वारा नहीं कहा, जो कर्म ब्रह्मा ने किए वो कर्मों में हम बच्चों को फॉलो करना, क्योंकि वो कर्म श्रेष्ठ कर्म करने वाला कौन था उस तन में? शिव बाबा।